padam. Mantra moolam gurur vakyam moksha moolam gurur kripa moksha moolam gurur kripa. अर्हत सिद्ध परमात्मा आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आगम वाणी को भावमय वंदना, उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को श्रीमद् उत्तराजन सूत्र। उस सूत्र में जीवन को देखने का, समझने का और अपनी समस्याओं का समाधान पाने का नजरिया मिलता है। जीवन विविध रूपा है और समस्याएं भी बहुरूपा है, इसलिए समाधान भी कोई एक तो नहीं हो सकता, अनेक आयामी समाधान भी है। अगर हम जीवन की सारी समस्याओं को संख्या में देना चाहें, डिजिट में समझना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि जीवन की सारी समस्या एक शब्द में कहें तो अज्ञान है, दो शब्द में कहें तो राग और द्वेष है, तीन शब्द में कहें तो माया, निदान और मिथ्या दर्शन शल्य है, चार शब्द में कहें तो चार कषाय है, क्रोध, मान, माया और लोभ। और इस तरह से हम जितने शब्दों में कहना चाहें उतने ही अपेक्षाओं से हम समस्याओं को समझ सकते हैं। समस्या कितनी भी भाषाओं में, कितने भी शब्दों में अलग अलग तरीकों से व्याख्यात की जाए, पर अगर हम समाधान की दृष्टि को पाना चाहें तो उसका पहला पड़ाव, पहला सूत्र समाधान का जो होगा वह होगा विनय। बिना विनय से समाधान की शुरुआत नहीं हो सकते। आत्मज्ञानी श्री विराट गुरु जी गाया करते, जो विनय करे सब भय हरे, जो अकड़ेगा वो रखड़ेगा, जो विनय करे सब भय हरे, जो अकड़ेगा वो रगड़ेगा रखड़ेगा, जो अकड़ के रहेगा वो रगड़ खाता रहेगा, जो विनय करेगा वो सारे भयों से मुक्त हो जाएगा। विनय को लेकर न जाने आज दिन तक कितने प्रवचन आप लोगों ने सुने होंगे, कितनी कहानियां सुनी होंगी और न जाने कितने नैतिक उपदेश, क्योंकि आप सब बड़े बुजुर्ग हो तो आपने न जाने कितने नैतिक उपदेश अपने बच्चों को दिए भी होंगे। हर सास चाहती है बहू विनयवान हो, हर पिता चाहता है कि पुत्र विनयवान हो, हर गुरु चाहता है कि शिष्य विनयवान हो, हर शिक्षक चाहता है कि स्टूडेंट विनयवान हो। और इसीलिए जब भी हमें हमारे अधीनस्थ कोई लोग मिलते हैं हम विनय की बातें कहना स्टार्ट कर देते हैं। अपने अधीनस्थों को विनयवान बनाने की चेष्टा हम सब में थोड़ा बहुत पाई जाती है, किसी सभा में आप खड़े हो एज ए वक्ता, तो आप क्या चाहोगे कि सभी श्रोता शांति से मुझे सुन रहे हो? कतारबद्ध बैठे हो, अनुशासित हो, मैं बोलना स्टार्ट करूं उससे पहले सब साइलेंट हो जाए, ठीक है ना? लेकिन कोई और वक्ता बोल रहा होता है तब क्या होता है? हमारी चपड़ चपड़ चालू रहती है, हम दूसरों को कतारबद्ध देखना चाहेंगे, पंक्तिबद्ध, अनुशासित, एक व्यवस्थित शैली में, लेकिन हमें स्वयं को बैठना हो तब हम ये देखते हैं कहाँ हमारा कंफर्ट ज्यादा मिलेगा, हमको कंफर्ट कहाँ ज्यादा मिलेगा, हम वहां बैठ जाते हैं चाहे वहां लाइन टूट रही हो। नहीं, आपने मुश्किल से कोई जैन सभाएं, जैन स्थानक ऐसे देखे होंगे, जैन संगठनों में कोई ऐसी स्थान, ऐसे पंडाल, आयोजन, महोत्सव में कहीं देखा होगा कि लोग अनुशासित होकर बैठे हो, लोग व्यवस्थित सलीकेबद्ध बैठे हो और लोग शांत बैठे हो। हमारे सामने तो कोई आचार्य हो या उपाध्याय हो, साधु हो या साध्वी हो, वो बोलना स्टार्ट कर दे तब तक भी हमारा बोलना बंद नहीं होता है। नहीं ऐसा, हम सारे लोग इस मामले में कितने अजीबोगरीब है कि दूसरों से विनय की उम्मीद करते हैं पर अपनी जिंदगी में विनय है या नहीं यह झांकने की जरा भी चेष्टा नहीं करते। दूसरों से अनुशासन की उम्मीद करते हैं, अनुशासित जीवन शैली की उम्मीद करते हैं, लेकिन स्वयं का अनुशासन में रहना हो तो हमारे पास में बहुत सारे बहाने होते हैं, बातें करने के बहाने होते हैं, लाइन तोड़ने के बहाने होते हैं, रूल्स तोड़ने के बहाने होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से पलायन करने के बहाने होते हैं, अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ने के बहाने होते हैं, और अगर हम गुस्सा भी करें तो हमारे पास एक पर्याप्त बहाना होता है कि हम तो बच्चों की भलाई के लिए गुस्सा कर रहे हैं। अगर हम गुस्सा भी करें तो बच्चों की भलाई के लिए, अगर हम झूठ भी बोले तो परिवार की कमाई के लिए, अगर हम झगड़े भी करें तो उसके लिए भी हमारे पास बहाना होगा, हम तो धर्म की रक्षा के लिए झगड़ा कर रहे हैं। नहीं है? जब धार्मिक स्थलों पे लोग लड़ाई या झगड़े करते हैं और उनसे पूछा जाए कि आप धार्मिक क्षेत्र में लड़ाई क्या कारण से, तो उनके जवाब क्या होंगे? कहेंगे हम अहंकार की वजह से लड़ रहे हैं, कहेंगे हम मान्यताओं के आग्रह की वजह से लड़ रहे हैं। क्या वो कहेंगे कि हम अज्ञान की वजह से लड़ रहे हैं? नहीं, वो कहेंगे कि हम धर्म की रक्षा के लिए झगड़ा कर रहे हैं, हम अपने संप्रदाय की रक्षा के लिए झगड़ा कर रहे हैं, हम अपने गुरुओं के नाम के लिए झगड़ा कर रहे हैं, जैसे कि गुरुओं के नाम ने ये कहा हो कि तुम झगड़ा करना। कौन सा गुरु सिखाता है झगड़ा करना? कौन सा संप्रदाय सिखाता है राग द्वेष करना? कौन सा धर्म सिखाता है? मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, मजहब नहीं सिखाता ना वैर रखना, लेकिन हम सारे मजहबी झगड़ा करते, और झगड़ा करने का कारण हमारा मजहब, धर्म। तो बताओ, जो पहला अध्ययन है, जो पहला सूत्र है, जो पहला नींव का पत्थर है, इस जिन धर्म का मूल है, वह है विनय। हम सब दूसरों की नजरों में विनय देखना चाहते हैं, दूसरों की गर्दन को झुकी हुई देखना चाहते हैं, दूसरों की वाणी में मृदुता सुनना पसंद करते हैं, मधुरता सुनना अच्छा लगता है, लेकिन अपनी वाणी अपनी दृष्टि, अपनी चाल, अपनी गर्दन, वो कब कहाँ कैसे अकड़ गई, कैसे हम फूल के कुप्पा हो गए, वो हमें पता ही नहीं लगा। इसीलिए जीवन में समस्याएं बनी रहती है, उत्तर नहीं मिलते लोगों को। उत्तर अध्ययन की शुरुआत ही नहीं होती, बिना विनय के उत्तर अध्ययन की शुरुआत कैसे हो सकती है। अब एक दूसरा आयाम देखें इस जीवन का, कि जो लोग झगड़ा नहीं करते, जो लोग अकड़ कर नहीं चलते, सामने पलट के वार नहीं करते और अपने आप को विनयशील बतलाते हैं, क्या वे लोग भी एक्चुअल में विनम्र है? क्या वे लोग भी एक्चुअल में विनम्र है जो झगड़ा तो नहीं करते, अपने आप को विनयशील भी बतलाते हैं, क्या वो एक्चुअल में विनम्र है? उनके मन की बात सुनो तो पता लगता है कि वे लोग ऐसा कह रहे होते हैं कि यहां कह करके भी किसी को क्या कहना, कोई सुनने वाला तो है नहीं, कोई समझने वाला तो है नहीं, हमने इतना सहन किया, हमें अब तक मिला क्या? यहां जो सहता है उसको बहुत सहना ही पड़ता है। अगर हम चुप रहते हैं तो हमें दिन रात लोगों की मार सहनी पड़ती है, बोलेंगे तब भी कुछ हल तो निकलेगा नहीं, इसीलिए मन महसूस के रह जाते हैं, पर जो कुछ हो रहा है वो ठीक तो नहीं हो रहा, जो कुछ हो रहा है वो गलत ही हो रहा है, और मैंने इतना अपने आप को बदला भी, सहन किया भी, इससे फायदा क्या हुआ, भला क्या हुआ? यानी जो लोग अपने आप को विनम्र कह रहे हैं वे भी मन में या तो दुर्बल है, या असंतुष्ट है, या किसी अपेक्षा की लालसा से, किसी पुरस्कार की कामना से अपने आप को विनम्र किए बैठे हैं कि कम से कम मेरा बुरा तो नहीं लगेगा, बोल के बिगाड़ूंगा तो नहीं, चुप बैठा हूं, किसी अपेक्षा की उम्मीद में चुप बैठे हैं, किसी पुरस्कार की उम्मीद में चुप बैठे हैं, किसी प्रशंसा को पाने के लिए चुप बैठे हैं, अथवा मन ही मन कोलाहल से भरे हैं, ऊपर से चुप्पी साधे बैठे हैं। मन में तो उनके भी बहुत तनाव है, बहुत प्रतिक्रियाएं उठती है, लेकिन बोल करके व्यक्त नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि बाहर है ही कौन जो कभी उनको सुनेगा या समझेगा या बदलेगा या मानेगा या ग्रहण कर भी पाएगा। वे लोग अपने आप को विनम्र कहते हैं, लेकिन क्या वे वाकई विनम्र है? जैसे समस्या का समाधान प्रतिक्रिया करने पर नहीं है, किसी समस्या का समाधान प्रतिक्रिया करने से नहीं होता, ऐसी समस्या का समाधान ऊपर से चुप बैठना और मन ही मन प्रतिक्रिया करने से भी नहीं होता। लेकिन कई सारे लोग ऊपर से चुप बैठने को मान लेते हैं कि हम धार्मिक हैं, हम सहनशील हैं, हम शांत हैं। वस्तु तो वे भी शांत नहीं है। बहुत घरों में झगड़े होते हैं, दो लोग झगड़ा कर रहे होते हैं और तीसरा आदमी झगड़ा देख रहा होता है, और कभी उसकी बात सुनो ना तीसरे आदमी की, तो वो क्या कहता है? वो कहता है मुझे पता है दोनों में से कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, गुस्सा तो इतना आता है कि दोनों को उठ के थप्पड़ लगा दूं, लेकिन कुछ करने से कुछ होगा नहीं, इसलिए चुपचाप बैठा हूं। यानी गुस्सा तो उसको भी आता है, प्रतिक्रिया तो वो भी कर रहा है, बोल कर नहीं कर रहा। अथवा वो क्या कहता है कि हमें लेना देना क्या है, जिसको झगड़ा करना है करे, जिसको अलग होना है अलग हो, जिसको साथ होना है साथ रहे, हमें तो अपनी दो रोटी मिल जाती है, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। तो कई लोग ये सोचते हैं कि हमने अपना पल्ला झाड़ लिया तो समस्याएं खत्म हो जाएगी, हम समस्याओं को देखना बंद कर देंगे तो समस्याएं ठीक हो जाएगी। वे पल्ला झाड़ करके अपने आप को विनम्र बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं होते, वे भी विनम्र नहीं होते, क्यों? क्योंकि वे समाधान के प्रति पहले ही असंतोष जाहिर कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि कुछ बदलाव होगा नहीं। देखो, बच्चे झगड़ते हैं तो बड़े बूढ़े समझाने जाते हैं, और जब बड़े झगड़ते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे झगड़े तो बड़े समझाने जाएंगे, और बड़े झगड़ेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? जवाब दो ना। बच्चे स्कूल पे नहीं जाएंगे तो माँ बाप उठाने जाएंगे, जगाने जाएंगे, समझाने जाएंगे, और माँ बाप अगर अपने कर्तव्यों पे नहीं जाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे? वो कहेंगे छोड़ दो, इनको समझना नहीं है, ये बदलेंगे नहीं, ये सुनेंगे भी नहीं। और क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि सबके पास अपने बहाने होंगे, ठीक है ना? ये हमारा दृश्य है, हमारा मौजूदा वातावरण है कि हम सब लोग एक दूसरे के प्रति असंतुष्ट हैं। हम सब लोग भीतर से या बाहर से प्रतिक्रिया में रत है, प्रतिक्रियाशील है। हम सब लोग अच्छे फलों की उम्मीद करते हैं, विनय की उम्मीद करते हैं, लेकिन हम सब लोग वो विनय की उम्मीद औरों से करते हैं, अनुशासन की उम्मीद औरों से करते हैं, समाज में शांति की उम्मीद दूसरों से करते हैं। पर समाधान तो नहीं मिलता। कैसे मिलेगा समाधान? समाधान के लिए यूं तो बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन दो उपाय की चर्चा आज हम यहां करेंगे। पहला उपाय तो यह कि अगर हम दूसरों से विनय की उम्मीद करते हैं, दूसरों से कर्तव्य निष्ठ होने की उम्मीद करते हैं, दूसरों से आदर की उम्मीद करते हैं, और दूसरों से सहयोग की उम्मीद करते हैं, तो जो सारी उम्मीदें हम अपने साथियों से करते हैं, उन सारी उम्मीदों को हमें दूसरों से करने की बजाय अपने आप में पैदा करनी है। खुद में खुद विनम्र बने, खुद में अपने आप में हम कर्तव्य निष्ठ बने, अपने आप के जीवन के हम सहयोगी बने, और हम अपने साथियों के प्रति आदर से, आदर भाव से जुड़ करके जीना जाने। पहला समाधान, बिना इस बात की परवाह किए कि सामने वाला क्या करता है या क्या नहीं करता है, मुझे क्या कंट्रीब्यूट करना है ये सोचो। पर यहां हर आदमी अपना कंट्रीब्यूशन देने से पहले ये सोचता है कि सामने वाले ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया। नहीं, लोग जब चंदा लिखाते हैं, दान की घोषणा करते हैं, तब भी देखते हैं कि उस चंदे की लिस्ट में पहले किस किस के नाम आ चुके और किसने कितना चंदा दिया है, तो वो सामने वाले की चंदा देने की वजन को देख करके अपना वजन निर्धारित करता है। नहीं, जब गांव में कोई टीप लिखनी होती है, कोई चंदा लिखना होता है, कोई मंदिर का निर्माण है, कोई सामाजिक भवन का निर्माण है, कोई स्थानक उपाश्रय का निर्माण है, तो गांव के कुछ लोग जो चंदा लेने जाते हैं वो पहले ही अपने नाम के आगे एक बड़ी सी अमाउंट लिख देते हैं। एक भाई साहब ने पूछा, ऐसा आप क्यों करते हो? तो बोले, महाराज साहब, अगर मेरा नाम और उसके आगे इतनी बड़ी अमाउंट कोई देखेगा तो सामने वाले को प्रेरणा मिलेगी कि मुझे भी कम से कम इतना तो देना ही है। फिर हमने पूछा कि आप हर बार जितनी बार चंदा लिख कर लाते हो, हर बार ऐसा ही करते हो कि? बोला, हाँ। मैंने कहा, इतना पैसा आप देते हो? बोला, मैं ना भी दूँ तो चलेगा, लेकिन मेरा नाम रहेगा तो लोग काम करेंगे। और कई लोग नहीं देते, केवल नाम लिखवाते, और वे नहीं जानते कि जो नाम लिखवाते और देते नहीं है, वे चोरी करते हैं। यश की चोरी, यश की चोरी हुई ना, क्योंकि यश तो लिया उन्होंने, नाम की घोषणा करी तो यश तो ले लिया, लेकिन उसका मूल्य तो चुकाया नहीं, तो यश की चोरी हुई ना, लेकिन करते लोग ऐसे ही काम कोई और करता है और अपना नाम आगे लिखवा देते हैं। आइडिया किसी और का होता है, अपने नाम से प्रचारित कर देते हैं। ये भी चोरी है, पर इतनी कॉमन हो चुकी है कि लोग सोचते ही नहीं है कि ये चोरी भी है। भजन किसी और का गाते हैं, सामने वाले लेखक का नाम हटा करके अपना नाम उसमें ऐड ऑन कर देते हैं, ये भी चोरी है। किसी की रचना की, किसी की कविता की, किसी के गीत की चोरी, लेकिन चलता है, क्या करोगे। ऐसा करना उचित नहीं है। तो पहला समाधान यह हो विनम्रता का, कि जो पाठ हम औरों को पढ़ाना चाहते हैं, जो संदेश हम दूसरों की जिंदगी में देखना चाहते हैं, वो संदेश अपनी जिंदगी में पैदा करो बिना अपेक्षा के, बिना ये सोचे कि सामने वाला करे तो मैं करूं। अगर ये सोच के करते हो तो विनय नहीं है, क्योंकि विनय का मतलब है बिना अपेक्षा के जो करे। विनय बिना किसी नय के, बिना किसी अपेक्षा के जो विनम्र है वो विनम्र है, जो किसी अपेक्षा से विनम्र बनाए वो विनम्र नहीं। जैसे अपने से बलवान को सामने देख करके चुप हो जाना, या बलवान के बुरे वचनों को भी इसलिए सहन कर लेना कि अरे जाने दो ना, अभी कुछ पंगा लेंगे तो अपने कोई मार पड़ेगी, तो आपने पंगा नहीं लिया, क्षमा कर दिया सामने वाले को, पर वो क्षमा क्षमा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां तो डर था कि पंगा लिया तो मार खानी पड़ेगी, तो डर के मारे जो क्षमा की गई, लालच के मारे जो विनय किया गया, वो विनय विनय नहीं है, औपचारिकता है। और उस औपचारिकता से जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, उत्तर अध्ययन नहीं होगा। विनय वह है जो उत्तर दे, जो समस्याओं का समाधान करे, प्रश्नों का उत्तर दे, वो विनय है। तो पहली दृष्टि हम अपने में डेवलप करें कि हम बिना किसी अपेक्षा के अपना कॉन्ट्रीब्यूशन राइट करें, खुद कर्तव्यनिष्ठ बने। एक बहुत प्यारी सी कथा आती है, एक बार एक राजा ने किसी शत्रु राज्य पर आक्रमण किया, और जिस शत्रु राज्य पर आक्रमण करके उस राज्य को जीत लिया, उस राजा को बंदी बना लिया, शत्रु राजा को, तो उसने अपने दरबार में बैठ के मंत्रियों से सलाह की कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस राज्य को जीत लिया है उस तक अपनी सीमाएं विस्तृत करके दोनों राज्यों को एक ही कर लेना चाहिए, या दोनों राज्यों को अलग अलग बनाए रखना चाहिए। अगर जीत लिया है तो राज्य की सीमा विस्तृत करके दोनों को एक ही बना देना चाहिए या अलग अलग रखना चाहिए, तो हर आदमी क्या कहेगा कि जब आप जीत चुके हो, आप मालिक हो, तो दोनों राज्यों तक अपनी सीमाओं को विस्तृत करो और दोनों को एक बना लो और आप राजा रहो दोनों राज्यों के। लेकिन एक बुद्धिमान मंत्री था, उसने कहा कि अगर आप मेरा निवेदन स्वीकार करें तो आप अपने राज्य के ही स्वामी बने रहे, उस राज्य के राजा बनने की चेष्टा ना करें, उस राज्य के राजा को जिसको आपने हरा लिया है उससे हर साल जुर्माना की राशि लें, लेकिन उसको ही राजगद्दी सौंप दें, वापस उसी को राज्य का राजा बने रहने दें। तो राजा को बड़ा गुस्सा है, ऐसा कैसे, फिर मैंने इतनी युद्ध किया, अपना पराक्रम दिखलाया और उस राज्य को छोड़ दो। हाँ, छोड़ देने में भलाई है। राजा बोला ऐसा कैसे कि वो राज्य हुजूर आपके लायक नहीं है, आपके लायक नहीं है वो राज्य, वहां की जनता, अगर आप वहां तक अपनी सीमाओं को बढ़ाते हैं तो आप शक्तिशाली नहीं होंगे बल्कि आप कमजोर हो जाएंगे। ऐसा कैसे, राजा को बात जची नहीं। राजा बोले ऐसा कैसे, वो मेरे लायक नहीं, ऐसा आप कैसे कह रहे हो, सिद्ध करके बताओ, प्रमाणित करके बताओ, बिना प्रमाण के मैं स्वीकार नहीं कर सकता इस बात को। वो मंत्री बोला ठीक है, हम आपको अगले रविवार को ये सारी घटना प्रमाणित करके बताएंगे। और उसने उस जीते हुए राज्य के अंदर मुनादी फिरवा दी कि गांव के बाहर जो बड़ा सा सरोवर है जो सूखा पड़ा है, तालाब जो सूखा पड़ा है, राजा कोई बड़ा सा यज्ञ करने जा रहा है और उस यज्ञ के लिए दूध का भरा सरोवर चाहिए। तो सभी लोग अपने अपने घर से रविवार के दिन सूरज उगे उससे पहले एक लोटा दूध डाल के जाए, एक लोटा दूध सूरज उगे उससे पहले सरोवर में डाल करके अपने घर में पहुंच जाना है। जब वह सरोवर दूध से भर जाएगा, राजा एक बड़ा सा यज्ञ का आयोजन करेगा और उस आयोजन के सफलता हो जाने पर दोनों राज्य में सुख समृद्धि भरपूर हो जाने वाली है, राज्य की जनता सुखी हो जाएगी। केवल एक लोटा दूध अपने घर से लेकर के सूर्योदय से पहले रविवार के दिन आपको डाल करके आना है। कितनी आसान बात है ना। आप लोगों को कहा जाए तो क्या करोगे? डाल दोगे एक लोटा दूध? डाल दोगे ना। उस राज्य के लोगों ने सोचा कि सूरज उगने से पहले एक लोटा दूध घर से निकाल करके डाल के आना है। सूरज उगने से पहले कौन देख रहा होगा हमने दूध डाला कि पानी डाला, तो क्यों ना जाएं और पानी डाल करके आ जाएं। तो अधिकांश लोगों ने दूध डालने की बजाय एक चम्मच दूध में भी अगर पानी डाल दो तो उसका कलर तो दूध जैसा हो ही जाता है ना। एक लोटे पानी में अगर 2-5 चम्मच दूध मिला दो तो उसका कलर तो दूध जैसा हो ही जाने वाला है। तो लोगों ने जाकर के सबने, जब सूरज उगा, राजा मंत्री और सारे दरबारी लोग वहां पे पहुंचे। उस मंत्री ने बताया, देख लो राजन ये क्या है यहाँ पर। बोला, यहाँ तो सब पानी पानी है, दूध का तो नामो निशान नहीं दिख रहा। तो मंत्री बोला, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये राज्य की जनता हमारे योग्य नहीं है। ये लोगों को जब आप कंट्रीब्यूशन करने को कहोगे ना, तो ये दूध की जगह क्या डालने वाले हैं? पानी डालने वाले हैं। इशारा समझ गए होंगे। हम सारे लोग अपने संग में शांति की उम्मीद करते हैं, समाज में भाईचारा प्रेम की उम्मीद करते हैं, संप्रदायों में परस्पर सम्मान की उम्मीद करते हैं। लेकिन जब हमें डालने को कहा जाता है तब हम क्या डालते हैं? जब हमें कंट्रीब्यूशन करने को कहा जाता है तब हम किस चीज़ का कंट्रीब्यूशन करते हैं? दूध का या पानी का, प्रेम का या खार का, कौन सी वाणी का कंट्रीब्यूशन करते हैं? वहां तो उन्होंने पानी डाला, हम वाणी डालते हैं। वाणी, हम शब्दों से ही तो जुड़ते हैं, शब्दों से ही तो हमारे संबंध बनते हैं। लेकिन हम कौन सी वाणी का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं? जो वाणी हम भी सुनना पसंद ना करें, हम उस वाणी का कंट्रीब्यूशन कर रहे होते। जो आलोचना हम सुनना पसंद ना करें, वो आलोचना हम औरों की कर रहे होते हैं। और तब विनय श्रुत कहता है कि तुम विनय के योग्य नहीं तो तुम जीवन के उत्तर पाने के योग्य भी नहीं, समृद्धि के योग्य भी नहीं। अगर खुद अपने आप को अनुशासित नहीं कर सकते तो समाज से अनुशासन की उम्मीद करना बेकार है। और ये गलती न जाने कितनी सदियों से हम लोग करते आ रहे हैं। और इसी गलती की वजह से हम सब के पास में शास्त्र के शास्त्र भरे पड़े हैं। हो सकता है हम में से कितने लोगों की जुबानों पर भी शास्त्र रटे पड़े हो, लेकिन तब भी हमारे जीवन में कोई संगीत नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई शांति नहीं, कोई समाधान नहीं। और कारण एक ही है कि जो ज्ञान हम जानते हैं, हम चाहते हैं कि दूसरे लोग उस ज्ञान से चले, हम खुद नहीं। तो पहला सूत्र विनय श्रुत का कि घबराओ मत, डरो मत, लालच में आकर के विनम्र मत बनो, औपचारिक विनय मत रखो, समझदारी से विनय को अपनाओ, दूसरा क्या करेगा ये मत सोचो, अपना कंट्रीब्यूशन राइट दो। दूसरे को बदलने के लिए नहीं, दूसरे को सुधारने के लिए नहीं, खुद को सुधारने के लिए चलो। खुद को बदल के जिंदगी जियो, खुद के नजरिए को बदल के जिंदगी जियो। तो जो चीज हम उम्मीद औरों से करते हैं, वो उम्मीद हम अपने आप से करें, अपने आप में उन गुणों को पैदा करें जो गुण हम दूसरों में देखना चाहते हैं। ये पहला सूत्र है। और दूसरा सूत्र यह है कि कभी किसी को अविनीत कहना, किसी को आक्रामक कहना, किसी को दुष्ट कहना, किसी को बुरा कहना, ये इतना ही पर्याप्त है। ये बतलाता है कि जो दुर्गुण हमें दूसरों में दिखलाई पड़ रहे हैं, वो सारे ने सारे दुर्गुण कहीं ना कहीं हमारे में जरूर है। अगर कोई व्यक्ति, सूत्रों में स्पष्ट लिखा है जैन सूत्रों में, कि अगर कोई साधु किसी अन्य साधु को कहे कि यह साधु नहीं है, अगर कोई साधु किसी अन्य को कहे कि यह साधु नहीं है, तो वो जो कहने वाला है वो स्वयं साधु नहीं है। वो स्वयं साधु नहीं है। अगर कोई साहूकार कभी किसी को कह दे, कहेगा नहीं, साहूकार कभी नहीं कहेगा, लेकिन अगर साहूकार कह दे कि ये चोर है, तो ध्यान दीजिएगा कि वो साहूकार स्वयं साहूकार नहीं है। क्योंकि किसी अन्य को चोर कहने का साहस एक चोर ही कर सकता है, साहूकार नहीं कर सकता। साहूकार की एक विशेषता होगी कि उसकी दृष्टि में कोई चोर नहीं होगा। साधु की विशेषता होगी कि उसकी दृष्टि में कोई असाधु नहीं होगा। और विनयवान की एक विशेषता होगी कि उसकी दृष्टि में कोई अविनीत नहीं होगा। वो अविनीत से अविनीत में भी विनम्रता को देख सकता है तो ही वो विनयवान है। वो असाधु में भी साधुता को देख सकता है तो ही वो सच्चा साधु है। वो सब में रहे हुए गुणों को देख सकता है तो ही वो वाकई में सद्गुणी है। मनोविज्ञान स्पष्ट कहता है कि अगर आपको किसी में कोई दोष नजर आता है, वो दोष आप में तो पहले है, अगर आप में नहीं होता तो दूसरे में नजर नहीं आ सकता था। इसलिए विनय श्रुत कहता है कि अगर दृष्टि में दोष भरे हैं तो ही आपके चारों ओर के वातावरण में दोषों का सृजन होता चला जाएगा, दोष बढ़ते चले जाएंगे। और आपकी दृष्टि दोष देख रही है, इसका मतलब है अभी विनय श्रुत नहीं हुआ, घटित नहीं हुआ। पढ़ना अलग चीज है अध्ययन को, लेकिन अध्ययन का जीवन में उतरना अलग चीज है। और जब जीवन में अध्ययन उतरता है, विनय उतरता है, उस आदमी को कोई भी अविनीत नजर नहीं आता। उसको अविनीत से अविनीत आदमी में भी रहे हुए गुणों को देखना आता है। तो केवल दो पॉइंट। फर्स्ट, जो दूसरों से उम्मीद करते हो, जिन गुणों की, जिस विनम्रता की, जिस आदर की, जिस कंट्रीब्यूशन की, जिस सहयोग की, वो अपने में डेवलप करो। और सेकंड, अगर दूसरों में कमियां नजर आ रही है तो ध्यान दो कि वो कमियां हमारे में तो है ही, तब ही दूसरों में नजर आ रही है, अन्यथा नजर नहीं आ सकती थी। हमारे गुरुजी ने एक बार एक बात बताई हमें, और सुन के मैं बड़ा आश्चर्य हुआ, पर आप लोगों को तो कोई आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि आप लोग बहुत अनुभवी हो, संसार में बहुत सालों से रह रहे हो, समाज की बहुत सारी घटनाओं को जानते पढ़ते सुनते हो। उन्होंने हमें बताया कि जब चोरों को पकड़ना होता है तब पुलिस चोरों की मदद लेती है। आपको तो पता होगा ना कि जब चोरों को पकड़ना होता है तो पुलिस चोरों की मदद लेती है। हमने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ऐसा कैसे? गुरुजी बोले, क्योंकि पुलिस को पता है कि एक चोर ही चोर को पकड़ के लाके दे सकता है, कि चोर को पता होता है कि चोर चोरी करने के बाद कहाँ जाके छुपेगा, क्योंकि चोर ही चोर को समझ सकता है। ठीक है ना, एक दुष्ट ही दूसरे को दुष्ट समझ सकता है, जो खुद दुष्ट ना हो वो दूसरे को कभी दुष्ट नहीं समझ सकता। एक साधु ही सबको साधु समझ सकता है, असाधु नहीं समझ सकता। अगर ये बात समझ आती है तो हम जिंदगी की कितनी सारी बुराइयों से बच सकेंगे, और बच जाएंगे। यही भावना हम भाते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन। अपनी करुणा का जल तू बहाकर, कर दे पावन हर एक मन का कोना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। जय हो, जय हो, जय हो।